नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तन्हाइयों में दुनिया से दूर सबसे जुदा बीते जीवन का तू झरना, सुन ले प्रभु मेरी प्रार्थना। करता रहूं मैं इबादत तेरी, आशीष दे दे मुझे। अन्हाइयों में दुनिया से सबसे जुदा हो के, तन्हाइयों दुनिया से दूर सबसे जुदा हो के, तेरे चरणों तेरे चरणों में यीशु आया हूँ रो रो के। तन्हाइयों में दुनिया से दूर सबसे जुदा तेरे चरणों में यीशु आया हूँ रो रो के। तेरे चरणों में यीशु आया हूँ रो रो के। तेरे चरणों
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहकर आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। मित्रों, और आशा यह भी करता हूँ कि आज भी आप परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अन्द्रियास, शमौन और नतनेल के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि वो किस रीति से और आगे बढ़ते गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के उन चमत्कारों के कामों को भी देखेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए और प्रार्थना करें और उससे सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन सचमुच में जीवित है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, आपके वचन से मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी आपसे विनती है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे हृदय, हमारे विचारों को, हमारे एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। हम नहीं जानते कि हमारे श्रोता भाई बहन किस स्थिति में हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आप उनकी हर एक परिस्थितियों में सहायता कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान में हैं। हो सकता है कि अपने बीमारियों से, नौकरी के लिए और अपने विवाह के लिए, प्रभु आप उन पर भी सहायता करें, अपने वचन से बातचीत करें, ताकि वे आप पर भरोसा रख सकें, आपसे प्रेम कर सकें और इस बात को समझ सकें कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनके हर एक जरूरतों को समझते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हर एक से आप बातचीत करें और हम सब की सहायता करें, ताकि आज के अध्ययन के द्वारा हम आप में और अधिक बलवंत होने पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि मसीह ने नतनेल से कहा कि वह बड़े बड़े काम देखेगा, और फिर समय की कमी के कारण हमें अपना अध्ययन रोकना पड़ा था। यीशु ने उससे यह भी कहा जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 51 पद में आज पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उससे कहा कि तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। मित्रों ध्यान दीजिए कि यीशु यहाँ याकूब के स्वप्न के संबंध में ही कहता है। याकूब ने एसाव से छल किया था और भागकर अपने मामा के पास जाकर रहने लगा था। मार्ग में वह सो गया और उसने स्वप्न में देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी उतरी जिस पर स्वर्गदूत उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। वह सोचता था कि उसका परमेश्वर पीछे रह गया है। यह उसकी संकीर्ण मानसिकता थी। मित्रों परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वह हर स्थान में उसके साथ है। यीशु के कहने का अर्थ था कि स्वर्गदूत उसकी सेवा में स्वर्ग से आएंगे और स्वर्ग लौट जाएंगे। उसे स्वर्गदूतों पर अधिकार था। इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर परमेश्वर था जिसने कहा, हम मत्ती रचित सुसमाचार 3:17 में पढ़ते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय मित्रों मसीह हमारे लिए सीढ़ी बन गया जिस पर से होकर हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मित्रों उसके द्वारा आप पिता के पास तभी पहुंच सकते हैं जब आप उस पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करें। यूहन्ना का 1 अधिक लंबा है वरन महत्वपूर्ण भी है। वचन देहधारी हुआ, वह स्वयं परमेश्वर है। अतः हमारे लिए परमेश्वर अब प्रकट है। उसकी गवाही यूहन्ना ने दी कि परमेश्वर का मेमना वह है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अन्द्रियस ने कहा कि वह मसीहा है। फिलिपुस ने कहा कि वह पुराने नियम की पूर्णता है और नतनेल के अनुसार वह परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर पुत्र और इसराइल का राजा है। मित्रों अब वह काना नगर में विवाह के उत्सव में गया जहां उसने पहला चमत्कार किया। 11:2 के हम देखते हैं कि यूहन्ना लिखता है, यह यीशु का पहला चमत्कार था। वे जो कहते हैं कि यीशु बचपन में मिट्टी की चिड़ियां बनाया करता था और उड़ाता था, ये सब झूठ और बकवास है। यहाँ फिर यूहन्ना समय और स्थान को विशेष रूप से स्पष्ट करता है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में यह प्रभु यीशु की सेवा का आरंभ है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:1-2 में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां पर थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में नेवते गए थे। मित्रों कुछ बाइबल शिक्षकों का मानना है कि यीशु की माता विवाह करने वालों के रिश्तेदारों में से थी। यह संभव है और कल्पना भी की जा सकती है। वहां यीशु के साथ उसके शिष्य भी थे। यह समय फरवरी का माह था और इसके अंत या मार्च का आरंभ था। वर्ष था 27। यूहन्ना समय और स्थान के संबंध में अति स्पष्ट है। पिछले दृश्य में हम बैतसैदा में थे और अब हम गलील के काना में हैं। 12 में वह कफरनहूम में होगा और 13 में वह यरूशलेम में जाएगा। यूहन्ना मरियम का नाम नहीं लेता है, वह उसे यीशु की माता कहता है। वह यीशु से बड़ी असामान्य याचना करती है। हम उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:3 में आगे पढ़ते हैं। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। मित्रों मैंने किसी स्वतंत्र विचारवादी का लेख पढ़ा जिसमें उसने यीशु को पियंकड़ कहा था। यह पुराने नियम की संस्कृति है और वहां भोज के समय दाख मधु दिया जाता था। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कॉकटेल पार्टी थी या कोई शराबियों की पार्टी थी, वह एक धार्मिक प्रथा थी। मित्रों आप यहाँ पर लिख लें कि इस विवाह उत्सव में पियंकड़पन नहीं हो रहा था। यीशु की सेवा का आरंभ विवाह उत्सव में हुआ और अंत भी विवाह उत्सव से ही होगा जब मेमने के विवाह में कलीसिया उसकी दुल्हन होगी। मित्रों मूसा का पहला चमत्कार था पानी को लहू बनाना। यीशु का पहला चमत्कार था पानी को दाख मधु बनाना अर्थात दाखरस बनाना। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सत्य मसीह यीशु के द्वारा आए। ये कैसी विषमता है। मरियम के कहने का अर्थ क्या था? बिंगल ने ठीक ही कहा था कि मरियम के कहने का अर्थ था कि यीशु अपने शिष्यों को लेकर चला जाए। केल्विन के अनुसार उसके कहने का अर्थ था कि यीशु उपदेश दे तो उनका ध्यान दाख मधु से हट जाएगा। केल्विन वहां होता तो ऐसा ही करता कि अतिथि उसका उपदेश सुनकर सो जाए। मेरे विचार में मरियम के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके कहने का अर्थ है कि वह अवसर यीशु के चमत्कार के लिए अच्छा था। हम लुकार्ची सुसमाचार एक अध्याय उसके 34 में जिब्राइल ने उसे कहा था कि वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण करेगी, और लुका एक अध्याय के 38 में उसने प्रतिक्रिया में कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। परंतु उसके कौमार्य पर सदैव प्रश्न बना रहा, अतः वह चाहती थी कि यीशु सिद्ध कर दे कि वह पवित्र आत्मा द्वारा है। यीशु उसे स्पष्ट कहता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु के कहने का अर्थ था कि वह उसके नाम को धो देगा, परंतु वहां नहीं। यीशु के क्रूसीकरण के समय मरियम क्रूस के निकट खड़ी थी। यीशु ने उससे कहा, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय उसके 26 पद में पाते हैं, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मित्रों, यह उसका समय था। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के बाद मरियम उसके शिष्यों से निश्चय ही कहती होगी, मैंने कहा था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। रोम की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, 1 अध्याय उसके 4 पद में, पवित्रता की आत्मा के भाव से भरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मित्रों, उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए यीशु का मृतकों में से जी उठना आवश्यक था, अतः अभी उसका समय नहीं आया था। उसकी कुंवारी से जन्म लेना बड़े दिन द्वारा सिद्ध नहीं होता है, ईस्टर उसे सिद्ध करता है, क्योंकि वह वही है जो कहा गया था। हम यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ध्यान दीजिए, यह एक अति उत्तम परामर्श है। यह माता दिवस के लिए बड़ा अच्छा विषय भी है। हम देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, सो उन्होंने उन्हें मुहा मुंह भर दिया। ये पात्र अतिथियों के हाथ और पांव धोने के लिए पानी से भर कर रखे जाते थे, जो आज भी कहीं कहीं पर इसे अभ्यास में लाया जाता है। यीशु ने कहा कि वे उसे मुहा मुंह पानी से भर दें। हम यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय उसके 8 से 10 पद में पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वृतांत को विवाद का विषय न बनाया जाए कि उस दाख मधु में नशा था या नहीं। यहाँ मुख्य विषय नशे का नहीं है। यहाँ मैं वधु को नहीं देखता हूँ। आज सबकी दृष्टि वधु पर होती है और उसके कपड़ों पर होती है। पादरी और वर को कोई नहीं देखता। वर को देखने वाली केवल उसकी माता होती है। काना के विवाह में वधु का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान केंद्र का विषय वहां यीशु और पानी के पात्र थे। मित्रों, आपके और मेरे लिए इसमें एक महान आत्मिक शिक्षा है। हम पानी के ये पात्र हैं जो किसी महत्व की चीज नहीं है। यीशु हमें पानी से भरना चाहता है, और यह पानी क्या है? पानी परमेश्वर का वचन है। यह पानी जब हम में से निकलकर अन्य मनुष्यों के पास पहुंचता है, तब वह दाख मधु बन जाता है। अर्थात आनंद बन जाता है और उत्साह देता है, जो पवित्र आत्मा का कार्य है। इफिसियों की पत्री 5:18 में पौलुस लिखता है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा इस पानी को लेकर चमत्कार दिखाता है जो होता हुआ भी नहीं दिखता, परंतु मनुष्य के जीवन से प्रकट होता है कि हमारे रेडियो कार्यक्रम से परिवर्तित जीवनों के पत्र जो हमारे पास आते हैं, हमारा यह पानी अर्थात परमेश्वर का वचन जब श्रोताओं को दिया जाता है तब वह दाख मधु अर्थात आनंद में बदल जाता है। जो दुखी हैं वे आनंदित होते हैं, जो बीमार हैं वे चंगाई पाते हैं। मेरे मित्रों, वर्षों पूर्व मेरी भेंट एक दंपति से हुई जो किसी रात्रि क्लब से बचाए गए थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी प्रतिभा को यीशु के लिए काम में लेंगे। मुझे उनका विचार अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, रात्रि क्लब में आपकी प्रतिभा क्या है? वे उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने उनसे कहा, देखो, जब आप और मैं यीशु के पास आते हैं तब उसे केवल पापी ही मिलते हैं, पानी के गंदे पात्र। मैंने उन्हें काना नगर के विवाह में पानी के इन पात्रों के बारे में अच्छी रीति से समझाया कि यीशु उनको परमेश्वर के वचन से भर देना चाहता है और उसे दूसरों को परोसना चाहता है। मेरे मित्रों, मैंने कहा कि जब पवित्र आत्मा उसे परोसता है तब वह दाखमधु बन जाता है जो मसीह का आनंद है। यह दाखमधु हर एक विश्वासी के जीवन में नई उत्तेजना और जीवन का आनंद भर देता है। उन्होंने मेरा परामर्श स्वीकार किया, हम अच्छे मित्र बन गए। कुछ वर्षों बाद मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई और वे बड़े उत्साह से पुकार उठे, पानी के गंदे पात्र यहाँ हैं। परमेश्वर ने उन्हें उपयोग किया, परंतु रात्रि क्लब की प्रतिभा के द्वारा नहीं, उसने उन्हें वचन से भरा और उन्हें इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय मित्रों, यह एक अति उत्तम संदेश है। वह हमें वचन से भरना चाहता है और फिर वचन दूसरों तक पहुंचाना चाहता है ताकि उसके द्वारा लोग आशीष पाएं, उत्साह से भरें और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम वो पात्र हैं कि हम अपने में वचन को ले सकें। मेरे मित्रों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में थे और उस चमत्कार को भी उन्होंने देखा, लेकिन आज सवाल यह है मेरे लिए और आपके लिए कि क्या हम वह खाली पात्र अर्थात वह गंदा पात्र बनना चाहते हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं कि हम पापी हैं। यदि हम ऐसा कर लेंगे तो निश्चय ही इस क्लब में जाने वाले दंपति की तरह हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा और हम भी उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, अर्थात वह मुझे और आपको शुद्ध करेगा, अपने वचन से हमें भरेगा और हमारे जीवन से दूसरों तक वचन को पहुंचाएगा और वे इसके द्वारा से आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज आप भी कहेंगे कि पानी के गंदे पात्र यहाँ हैं और देखें कि निश्चित रूप से प्रभु आपको स्वीकार करेंगे और आपको अपनी आशीषों से भर देंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं, उसके फाटकों में आनंद की go।